So, as I said, this is my little foreign language dubbing experiment. The episode that you're going to hear is Thursday's episode, and the dubbings are going to go in this order: Spanish, Arabic, Hindi, Chinese, followed lastly by German. So if you have knowledge or expertise in any of those languages, just sort of fast forward through in the episode till you get to the language that you recognize and let me know. Is it ready for prime time or not? Contact me at brian@techmeme.com. Thanks. We all know there are things in life that you have to compromise on, but when it comes to your health, there is no compromise. So don't go back to that one doctor who uses your appointment to catch up on the latest headlines, their family group chat, their crossword puzzles, just because they're available right now or they take your slightly sketchy insurance. Instead, check out ZocDoc, the place where you can find and book doctors who will make you feel comfortable, listen to you, and prioritize your health. And you can search by location, availability, and insurance, so literally no compromises here, because with ZocDoc, you've got more options than you know. ZocDoc is a free app and website where you can search and compare highly rated in-network doctors near you and instantly book appointments with them online. Once you find the doc you want, you can book them immediately, no more waiting awkwardly on hold with a receptionist. And these docs all have verified reviews from actual real patients. We're talking about booking appointments with tens of thousands of top-rated, patient-reviewed, credible doctors and specialists. I have personally used ZocDoc to find a podiatrist when I needed one for the first time ever in my life. Go to ZocDoc.com/techmeme and download the ZocDoc app for free. Then find and book a top-rated doctor today. That's ZocDoc.com/techmeme. ZocDoc.com/techmeme. Let's be real for a minute. Most guys would wear a t-shirt every day of their lives if they could. The problem is that most t-shirts are not acceptable to wear at work or out on a hot date night. But today's sponsor, Cuts, has finally changed that. Cuts t-shirts are such high quality, wrinkle-free, and so buttery soft that you can look like you're dressing up even when you're dressing down. Yeah, you heard that. Wrinkle-free. You never have to substitute comfort for fashion ever again. If you see me in a t-shirt, it's likely one from Cuts. I'm also a huge fan of their AO five-pocket pants, the right sort of step-up from jeans without going all the way into dress pants, like literally my ideal Venn diagram of professional-looking but comfortable-feeling. When you touch something from Cuts, you can immediately feel the quality. Their proprietary fabric blends are ridiculously soft and breathable, they don't wrinkle, and they look way more expensive than they actually are. For a limited time, our listeners get 20% off your entire order when you use code RIDE at checkout. That's 20% off your order at cutsclothing.com with promo code RIDE. Please support our show and tell them we sent you. Experience the perfect blend of style and comfort with Cuts Clothing. cutsclothing.com, promo code RIDE for 20% off.
Bienvenido a TechMeme Ride, hogar para el jueves 19 de octubre de 2023. Soy Brian McCullough. ¿Se está utilizando la criptomoneda para el terrorismo en la guerra actual? Netflix tiene buenas ganancias y sube los precios, de nuevo. ¿Qué significa si OpenAI tuvo que desechar completamente un nuevo modelo de IA y si esas reacciones de video de FaceTime te están molestando? Te diré cómo apagarlas. Esto es lo que te perdiste hoy en el mundo de la tecnología. A medida que el conflicto en Medio Oriente continúa a ritmo constante, ha habido varios titulares sobre el supuesto uso de cripto por parte de organizaciones terroristas. Chainalysis, que ya sabes, Chainalysis, así que quizás con un grano de sal, pero Chainalysis dice que estos informes han estado exagerando las métricas y utilizando lo que denominaron un análisis defectuoso, citando el bloque de, aunque la financiación del terrorismo es una porción muy pequeña de la ya muy pequeña porción de volumen de transacciones de criptomonedas que es ilícita, algunas organizaciones terroristas generan, almacenan y transfieren fondos utilizando criptomonedas. Chainalysis escribió en una publicación de blog: las organizaciones terroristas han usado históricamente y probablemente continuarán usando métodos tradicionales basados en fiat, como las instituciones financieras y las empresas fantasma como sus principales vehículos de financiación. En las secuelas del ataque terrorista de Hamas a Israel, varios medios de comunicación han buscado estimar el nivel de fondos cripto ilícitos que podrían haber sido canalizados hacia la ofensiva. Senator Elizabeth Warren, junto con más de un centenar de otros legisladores el miércoles, citaron un informe del Wall Street Journal sobre el supuesto uso de cripto por parte de Hamas. Y dijo que quiere respuestas de la administración del presidente Joe Biden. Chainalysis argumenta que hay, citando, dos componentes clave para analizar el volumen y flujo de fondos relacionados con el terrorismo. Cuantificando los fondos directamente en manos de una organización terrorista, e identificando a los proveedores de servicios que facilitan el movimiento de fondos vinculados para financiar el terror. Hemos visto estimaciones recientes relacionadas con el ataque a Israel que parecen incluir todos los flujos a ciertos proveedores de servicios. Eso recibió algunos fondos asociados con la financiación del terrorismo, dijo Chainalysis. En otras palabras, esos totales incluyen fondos no explícitamente relacionados con la financiación del terrorismo. Para el ojo inexperto, podría parecer que se recaudaron 82 millones en criptomonedas para la financiación del terrorismo, continuó Chainalysis. Pero es mucho más probable que una pequeña porción de estos fondos estuviera destinada a actividades terroristas y la mayoría de los fondos procesados a través del proveedor de servicios sospechoso no estaban relacionados. La empresa estima que de los 82 millones en los que se centra, se transfirieron fondos por valor de unos $450,000 desde una cartera afiliada a terror, añadiendo que sería incorrecto asumir que toda la actividad de la transacción está relacionada con el terrorismo. Aunque la firma es escéptica acerca de las estimaciones que dijo se han utilizado en algunos medios de comunicación, Chainalysis afirmó que no se debe ignorar el papel de los proveedores de servicios. Cita, estos proveedores de servicios están apoyando al terrorismo al actuar como facilitadores y cortar el acceso de los terroristas a ellos a través de sanciones u otras operaciones ofensivas es un componente importante para interrumpir la financiación del terrorismo, según se dijo en la publicación. Fin de la cita. También en el mundo de las criptomonedas, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha demandado a la bolsa Gemini de los Winklevoss, pero también Genesis y su empresa matriz, Grupo de Moneda Digital, alegando que estas empresas defraudaron a 230 mil inversores de más de $1,000 millones. La ironía aquí es que, si recuerdas, hace algunos meses los Winklevi y DCG estaban en una gran disputa pública acusándose mutuamente de estafarse. Cita de TechCrunch. La demanda también presentó cargos contra Genesis, exdirector ejecutivo, así Ciro, Michael Moro y el fundador y CEO de DGC, Barry Silbert, han sido acusados de intentar ocultar pérdidas de $1,100 millones y, cito, defraudar a los inversores y al público, fin de la cita. Alrededor de 230 mil inversores se vieron afectados por las tres empresas que alega la declaración del gobierno. La investigación afirma que Gemini mintió a los inversores sobre su programa de inversión, Gemini Earn, al calificarlo como una inversión de bajo riesgo cuando no lo era. La demanda alega que Gemini sabía que los préstamos de Genesis estaban poco asegurados y en un momento estaban altamente concentrados con una entidad, Sam Bankman-Fried's Alameda, pero no reveló esta información a los inversores. La agencia declaró que este fraude es otro ejemplo de malos actores causando daño a través de la industria de criptomonedas poco regulada, dijo James en un comunicado. En junio de 2022, uno de los mayores prestatarios de Genesis, fondo de cobertura criptográfico, Three Arrows Capital, incumplimiento de miles de millones de dólares en préstamos, y luego presentó una quiebra en julio. Alrededor de ese tiempo, Genesis perdió más de 100 millones de otro prestatario, Babel Finance. El fiscal general de Nueva York declaró llevando sus pérdidas totales a más de $1,000 millones. Las acusaciones llegan en un momento en que Bankman-Fried, cofundador del intercambio de criptomonedas FTX y la firma de comercio de cripto Alameda, está siendo juzgado por 7 cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Después de que FTX y Alameda se declararon en bancarrota en noviembre, la resultante carnicería del mercado ayudó a derribar a Genesis, que se declaró en bancarrota en enero. WhatsApp planea permitir a los usuarios cambiar entre dos cuentas en Android en las próximas semanas. Sin embargo, una segunda cuenta todavía necesitará un número de teléfono y una tarjeta SIM separados. Citando a The Verge, si usas dos cuentas de WhatsApp diferentes, pronto podrás acceder a ambas desde un solo dispositivo. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el jueves que WhatsApp está implementando la capacidad de cambiar entre cuentas en Android y Google. Y no necesitarás llevar encima un dispositivo extra o cerrar sesión continuamente de tu cuenta para poder hacerlo. Esta nueva función debería facilitar la gestión de tus conversaciones en varias cuentas, como si tú tienes una cuenta de WhatsApp para el trabajo y otra para enviar mensajes a amigos y familiares. Se lanzará en las próximas semanas. Meta señala que todavía necesitarás un número de teléfono y una tarjeta SIM separados, o un teléfono que acepta multisim o eSIM si quieres configurar una segunda cuenta. También necesitarás el segundo teléfono o su tarjeta SIM para recibir el código de paso único que WhatsApp enviará por SMS para acceder a su segunda cuenta en un dispositivo diferente. Después de esta verificación inicial, la aplicación continuará funcionando para ambas cuentas sin el segundo dispositivo o SIM, dice la portavoz de WhatsApp, Ellie Hedrick. Netflix reportó ganancias ayer y parecen ser buenas. Los ingresos aumentaron un 7.8% respecto al año pasado y el número clave aquí, la membresía global paga, aumentó un 10.8% año tras año, superando las estimaciones de los analistas. Las acciones de Netflix subieron más del 15% esta mañana en el comercio previo a la apertura del mercado. Pero también está esto, Netflix está aumentando sus precios en eEvery para su plan básico de $9.99 a $11.99 por mes. Su plan premium de $19.99 a $22.99 y algunos de sus precios en el Reino Unido y Francia. Los aumentos de precios son una señal de los esfuerzos de los transmisores para mejorar la rentabilidad y destetar a los clientes de las bajas tarifas de suscripción mensual que alejaron a los usuarios de los costosos paquetes de cable. En los primeros días de la transmisión, Netflix dijo en su informe de ganancias del tercer trimestre que su ingreso promedio por miembro disminuyó 1% año tras año como resultado de los limitados aumentos de precios en los últimos 18 meses. Un mayor porcentaje de su crecimiento proviene de países donde cobra menos por los planes y cambios en su mezcla de suscripciones. Se espera que el ingreso medio por miembro mejore en 2024, dada la subida de precios y el crecimiento esperado en los ingresos por publicidad. Netflix ha salido mejor que muchos de sus rivales este año, con empresas como Disney y Warner Bros. Discovery, lidiando con negocios de cable heredados en problemas y costosas transiciones al streaming, además de huelgas que interrumpieron sus horarios de producción. La empresa terminó el trimestre con 247.15 millones de suscriptores pagos. De nuevo, no sé por qué los despidos tecnológicos han vuelto con fuerza, solo puedo decirte lo que veo en los titulares. Nokia planea recortar hasta 14.000 empleos o alrededor del 16% de su fuerza laboral de 86.000. Después de informar que las ventas netas del tercer trimestre de 2023 bajaron un 20% en comparación con el año anterior a 4.98 mil millones y las ganancias bajaron 69% año tras año a 133 millones. Citando a CNBC... Uno de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones más grandes del mundo, Nokia, ha estado enfrentando obstáculos debido a una economía global en desaceleración y a reducciones en el gasto en infraestructura. Hecho por operadores móviles, las ventas de la unidad más grande de Nokia por ingresos, su negocio de redes móviles, disminuyeron un 24% año tras año a 2.16 mil millones de euros, con el beneficio operativo para la división cayendo un 64% año tras año. Nokia dijo que esto fue impulsado principalmente por las caídas en América del Norte. La compañía también describió los volúmenes de venta en el mercado clave de India, tan moderado como las implementaciones de 5G se normalizaron. 5G es la próxima generación de internet móvil que promete velocidades más rápidas, y Nokia es parte del despliegue de la tecnología en India. Las medidas de reducción de costos también se han llevado a cabo en los EEU este año, particularmente con operadores como Verizon y AT&T. A principios de este año, el rival de Nokia, Ericsson, anunció planes para despedir a 8.500 empleados. También es parte de un plan de reducción de costos. Ahora, ha vuelto a suceder. Mike Huckabee, Liza Turkhurst y otros autores están demandando a Meta, Microsoft y Bloomberg. Excesivo uso del conjunto de datos Books 3, que incluye libros pirateados, para entrenar sus LLMs, citando a Reuters. Un grupo de escritores, incluyendo al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y a la autora cristiana más vendida, Lisa, para maldecir, han presentado una demanda en el Tribunal Federal de Nueva York que acusa a Meta, Microsoft y Bloomberg de utilizar su trabajo para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin permiso. La demanda colectiva de derechos de autor propuesta presentada el martes dijo que las compañías utilizaron el controvertido conjunto de datos Books 3, que los escritores dijeron que contiene miles de libros piratas, para enseñar a sus modelos de gran lenguaje cómo responder a las indicaciones humanas. La demanda también acusó al grupo de investigación de AE, Alluder AI, de infracción de derechos de autor por supuestamente proporcionar datos utilizados para entrenar los sistemas de la empresa. Eso incluye el libro 3. Un portavoz de Bloomberg dijo el miércoles que la empresa no estaba utilizando Books 3 para entrenar versiones comerciales de su gran modelo de lenguaje Bloomberg GPT. Aunque utilizó el conjunto de datos para entrenar su modelo de investigación, un portavoz de Microsoft se negó a comentar y los representantes de Meta no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario sobre la demanda el miércoles. Esto es interesante. OpenAI ha tenido que suspender el trabajo en un modelo de IA de próxima generación que estaba diseñando para ser más eficiente. Citando la información, el año pasado, alrededor del momento en que ChatGPT se convirtió en una sensación global, los ingenieros de OpenAI comenzaron a trabajar en un nuevo modelo de inteligencia artificial con nombre en clave Arrakis. Aunque OpenAI se estaba preparando para potenciar el ChatGPT con un modelo diferente ahora conocido como GPT-4, que había completado antes en el año. El próximo modelo Arrakis permitiría a la empresa ejecutar el chatbot de manera menos costosa. El éxito con Arrakis también ayudaría a OpenAI a mostrar a Microsoft la rapidez con la que podría crear sucesivos modelos de lenguaje grandes, lo que sería valioso. Las dos empresas terminan de negociar una inversión y un acuerdo de producto de 10 mil millones de dólares. Pero para mediados de 2023, OpenAI había desechado el lanzamiento de Arrakis después de que el modelo no funcionó tan eficientemente como esperaba la empresa, según personas con conocimiento de la situación. El tropiezo significó que OpenAI había perdido tiempo valioso y necesitaría desviar sus recursos hacia el desarrollo de un modelo diferente. El fracaso también decepcionó a algunos ejecutivos de Microsoft, que pagaron por el derecho a usar la tecnología de la startup y sus productos, según un empleado de Microsoft con conocimiento del asunto. El revés de Arrakis podría perforar el aura de invencibilidad de OpenAI después de que humilló al pionero de la IA Google y construyó uno de los negocios de software de más rápido crecimiento en la historia. Muestra cómo la frontera de la IA está llena de trampas que pueden ser difíciles de predecir. Aunque los problemas de Arrakis no retrasaron el negocio de OpenAI este año, la startup podría sentir los efectos de la pandemia. Año en que la carrera por lanzar nuevos LLM se intensifica. Por ejemplo, se acerca el lanzamiento de Gemini, un conjunto de modelos de IA que espera superar a GPT-4 en términos de codificación y otras capacidades y la precisión de las respuestas. OpenAI, por su parte, continúa lanzando mejoras a su modelo líder en la industria, incluida la capacidad de descifrar imágenes, y planea anunciar una serie de nuevas funciones en noviembre. Los productos subyacentes del LLM como ChatGPT y algunos en OpenAI también los ven como con el potencial de ser una especie de sistema operativo, incluyendo para dispositivos personales debido a su capacidad para escribir código, entender imágenes y recuperar archivos. OpenAI comenzó a trabajar en Arrakis el otoño pasado con la esperanza de desarrollar un modelo que estuviera a la par con GPT-4. Podría ser más eficiente, en parte al aprovechar un concepto de aprendizaje automático conocido como Spectre, escasez de gente, dijo. Otros desarrolladores de IA, como Google, también han hablado públicamente de su uso de Sparsity, que OpenAI incorporó con éxito en software anterior. Arrakis habría permitido a OpenAI desplegar su tecnología de manera más amplia, ya que la compañía tenía acceso a un número limitado de chips de servidores especializados para alimentar su software. Alrededor de esta primavera, los investigadores de OpenAI comenzaron a entrenar el modelo, lo que implica el uso de hardware de computación avanzado para ayudar al modelo a procesar enormes cantidades de datos para que pueda aprender patrones. La empresa lo esperaba. Sería mucho más barato que el proceso de entrenamiento de GPT-4, dijeron las personas. Sin embargo, al principio, los empleados se dieron cuenta de que el modelo no rendía lo suficientemente bien como para obtener los beneficios esperados. El personal pasó aproximadamente un mes tratando de solucionar los problemas. La alta dirección de OpenAI decidió descontinuar su entrenamiento, dijeron las personas. A pesar del contratiempo, OpenAI todavía podría incorporar su trabajo en Arrakis en otros modelos. Eso incluye Gobi, un modelo próximo que puede generar o analizar texto, así como visuales, también conocido como multimodal. Fin de la cita. Finalmente hoy, noticias que quizás puedas usar si esas nuevas reacciones de video que llegaron a iOS 17 y macOS Sonata, si las cosas se están volviendo incómodas para ti en tus FaceTimes, aquí es como los apagas. Ve a Apple Insider. Como parte de iOS 17 y macOS Sonoma, Apple presentó una función de video llamada Reacciones. Cuando realizas y mantienes un gesto mientras estás a la vista de la cámara, se muestra un efecto especial en el feed de la cámara visto por otras personas. Hay bastantes efectos que van desde globos de texto con iconos de pulgares hacia arriba y hacia abajo, hasta globos flotantes, confeti y condiciones de lluvia tormentosa. Activados por gestos manuales, están diseñados para permitir a los usuarios mostrar cómo se sienten con una imagen más realzada. Esta es una característica potencialmente entretenida cuando está activa en llamadas con amigos y familiares, pero hay muchas ocasiones en las que quizás no quieras que ocurran las reacciones. Por ejemplo, ¿no querrías que de repente aparezcan fuegos artificiales y confeti a tu alrededor cuando estás en una llamada de conferencia relacionada con el trabajo? En un ejemplo de la vida real, Matt Howie escribió sobre Macedonia acerca de una instancia en la que un amigo suyo estaba en una sesión de terapia en línea. Cuando el terapeuta preguntó si estaba bien, el amigo hizo un doble pulgar hacia arriba, desencadenando fuegos artificiales detrás de su cabeza. Es tan malo que las sesiones de terapia en línea ahora comienzan con un diálogo de advertencia, escribe Howie. Lamentablemente, Apple tiene los elementos reactivos activados por defecto para cualquier persona que use una Mac con silicon de Apple con macOS Sonoma o posterior. O cualquier Mac compatible utilizando un iPhone 12 o posterior con cámara de continuidad. O en un iPhone que ejecuta iOS 17, la función también está predominantemente asociada con FaceTime, pero también pueden usarse en otras aplicaciones basadas en video. ¿Cómo desactivar las reacciones de FaceTime en iOS 17? Abre FaceTime, abre el centro de control, que es un desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para los dispositivos con Face ID y desliza hacia arriba desde la parte inferior para los modelos con Touch ID. Toca efectos, que tendrá un icono de cámara y muestra la palabra reacciones. Toca reacción. ¿Cómo desactivar las reacciones de FaceTime en macOS Sonoma? Abre FaceTime. Haz clic en el menú de video en la barra de menú. Generalmente será un icono de cámara verde y blanco. Haz clic en reacciones y cita. Nada para ti hoy. Hablamos mañana.
Whenever I need to do financial research for this show, for instance, during tech earnings season, when I have to analyze how various companies' stocks have been performing, I only ever turn to our sponsor today, Yahoo Finance. For more than 25 years, Yahoo Finance has been the brand behind every great investor. Whether you're a seasoned investor or are looking for that extra guidance, Yahoo Finance gives you all the tools and data you need in one place. They are the number one finance destination, producing a holistic look at the financial news cycle, including breaking news, original editorial perspectives, analyst ratings, independent research, customizable charts, and so much more. Securely link your brokerage accounts for a unified view of your wealth, including 401k and other investments. A comprehensive perspective is what sets apart great investors, and it's how Yahoo Finance ensures you have the insights to look at your wealth in its entirety. With a community of over 90 million users each month, their real strength is helping you on your way to financial success. For comprehensive financial news and analysis, visit the brand behind every great investor, yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. That's yahoofinance.com. When you go through airport security, there's one line where the TSA agent checks your ID and another line where a machine scans your bag. The same thing happens in enterprise security, but instead of passengers and luggage, it's end users and their devices. These days, most companies are pretty good at the first part of the equation where they check user identity, but user devices can roll right through authentication without getting inspected at all. In fact, 47% of companies allow unmanaged, untrusted devices to access their data. That means an employee can log in from a laptop that has its firewall turned off and hasn't been updated in 6 months. Or worse, that laptop might belong to a bad actor using employee credentials. Collide finally solves the device trust problem. Collide ensures that no device can log into your Okta-protected apps unless it passes your security checks. Plus, you can use Collide on devices without MDM, like your Linux fleet, contractor devices, and every BYOD phone and laptop in your company. Visit collide.com/ride to watch a demo and see how it all works. That's KOLIDE.com/ride, collide.com/ride.
Welcome to Tech Write Holland for October 19th, 2023. I am Brian McKella today. Are you using crypto for gearing in the current war? Netflix has good rentals and the price increases again. What does it mean if OpenAI needs to wash all its devices and if FaceTime filming bothers you? I will tell you about how to close it. This is what they lost today in the world of technology. Where the collaboration in the Middle East continues rapidly, there were numerous news about the use of crypto for smuggling institutions. Chainalysis. Chainalysis says these interviews were commissioning the comparison and use what they call unfair negotiation application process. Despite being a very small piece of free cryptocurrency transaction volume, financial terrorism is... Some smuggling systems recycle solutions and solvents using cryptocurrency. As Chainalysis wrote in blog post, smuggler institutions have historically used and will continue to use direct methods that support fiat-like financial institutions. Behind the scenes of shock companies from the primary financing vehicles, Ancote, at the end of a fiery threat to Israel, social media sites were used. The value of the free ownerships that may be committed in the scheme, Center Elizabeth Warren. And with over 100 other governments yesterday, they posted a message from the Western Fathers book about the epic use of crypto. She said she wants answers from President Joe Biden's administration. Chainalysis believes that there are basic fundamentals to achieve money related to attack and defense, identifying the money directly in the hands of a smuggling institution, and knowing the users helping to identify the money. To terror financing, we have seen a comparative effect at all on Israel seems to include all the goals of the specified aid members. You get some money associated with the executive system, said Chainalysis. In fact, that group has nothing to do with the peculiarity of smuggling storage. It may appear that $82 million of cryptocurrency was a drawback for execution. But it's more than impossible to be a small piece of this money, a profession for smuggling operation, and a collection of money that has been trialed through this suspected user. They were unrelated. The system records that 20 million kernels remaining, more than $450,000 of money was liberated from a piece associated with fear that adds. It would be incorrect to believe that all trial processes are associated with terrorism. Although the company is enjoying foundations that may have been used in some social sites, Chinalis argued that the role of assistants should not be closed. These users support smuggling, using them as aids. Cutting off access to the attack for them through tortures or other forbidden actions is an important part to break down the offensive attacks said in the video description. Also in Cryptoland, New York, the government's general office, Letitia James, has put Gemini from Winkle Voss on trial. But also Genesis and its Foundation Digital Currency Group believes that these institutions have planned 230,000 users. More than $1 million. The annoying part here is that, if you remember, a few months ago, Winklevey and DCG were in a big community war because they believe each other that they are risking each other. Timing and translation of Nancy Quonker. Timing and translation of Nancy Quonker. And Mikkel Morrow and DJC Foundation and Barry Silbert Foundation tried to hide $1.1 million in negotiations and try to hide their users and community. More than 230,000 partners have been influenced for the three companies. Make sure from the government's impact. The investigation claims that Gemini is lying to users about his Gemini investigation program, using it to conduct his investigation if it were not. The trial confirms that Gemini knew that Genesis payment was not insured, and at one site it was a high center, Sam Bank of Manfred's Almeida, but it did not show this information to the users, the organization did. That this individual is just another example of bad characters posing a risk through controlled cryptocurrency operations, said James in an article. In June 2022, it will be one of Genesis's largest provinces. Subscribe to the channel. She used billions of dollars and then disposed of them in a month. At that time, Genesis lost more than $100 million from another Babel artist user. The American police in New York returned its foundations to more than $1.1 million. The criticism comes when Fred Bankman, the founder of crypto exchange Fatty AX and the founder of crypto train farm Alameda, moves due to 7 edits related to kidnapping and money. After FTX and Alameda disposed of in October, the police group assisted in disposing of Genesis that had been disposed of in October. WhatsApp is planning to switch users between two accounts on Android in the next 2 weeks. The second account will require a phone number and phone comparison. The Verge says if you use different Octoberettes and WhatsApp, you will soon be able to access both of them from just one. Mark Zuckerberg announced a WhatsApp topic to change between interviews on Android. You won't need to constantly throw another device or enter it from your site to be able to do that. This new predator should make it easier to handle different locations. They have a WhatsApp site for work and another site for enrolling friends and families who will be registered next week. Meta notes that you will need a phone number and phone comparison, or a phone that accepts multi-SIM or any SIM. If you want to place a second account, you will also need the second phone or a SIM account to receive it. You can send WhatsApp locations to collect other locations on a different device. After the initial investigation, the application will continue on all sites. Without the second phone or the Sammy phone, said WhatsApp founder Ali Hetrick. Netflix did a comparison of money today, and it seems they're good. The money increases by 7.8% in a year and in a year. The key number here is that global financial participation was 10.8% in a year. The workers' reports are hidden. The value of Netflix was up 15% this morning in commercial training. But also there's this. Netflix increases United States price from $9.99 to $11.99 per month. The leak plan from $19.99 to $22.99 and some of its value in the United States and France. A timing and translation of Nancy Quonker. In the early days of viewing, Netflix informed us that its operations exceed 1% year on year due to price increases set in previous years, with a higher set of her downloads from the countries that pay her less than the tools and change more of her downloads. It is expected that the number of regular users will improve in 2024 due to the increasing price, expected development, and added users. Netflix is much better than its peers this year with companies like Disney, Warner Brothers, Discovery. That move with Family Talk from Apple confused the phones and visits and its role tied to obstacles within the police framework. The company ended the century by 247.15 million shares. Again, I don't know why tech costs might return. I can only tell you what I see in communications. Nokia decides to cut more than 14,000 coins, or about 16% of its operations 18,600. After introducing Net Series Q3 2023, it's down 20% year-on-year, $4.98 million, and the window ratio is down 69% year-on-year to 133 million euros. And CNBC Power, one of the biggest telecommunications funds in the world, Nokia, suffers from a strong impact from global pressure devices and division in the environmental division. Rated from Nokia Company, exceeds 24% year-on-year, $2.16 billion, with user benefits keeping 64% year-over-year. Nokia said it was a major driver in West America. The company also recorded the travel value in the main market sites in India. Take this video and karma. 5G is the next internet for the next generation, promising faster speed, and Nokia is part of India's technology development. There have also been price-splitting presentations in the United States this year, in particular with analysts like Verizon and ITN. Last year, Nokia announced Ericsson's refusal to lay off 8,500 employees, also part of the pricing plan. It happened again. Mike Hackby, Lisa Turkhurst, and many others are tormented by Meta and Microsoft and Bloomberg. Outputs on police conductivity allowed book data set that includes police preparation, AT occults. Thanks for watching! They specifically did in the United States government in New York. They consider Meta and Microsoft and Bloomberg using their work to train creative launch weapons without a name.
With everybody fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistance tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I use this, and you should too. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by their 30-day money-back guarantee, so get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
1,000 books killed to learn big words tools how to repeat people personally. Then the project tackled it, and one of the specific service expertise to monitor work and even many beauties. The Bloomberg leader said 10 days ago that the company did not use three writing for community specifications training from the big language system, Bloomberg. Although he used the data to train his model, Microsoft Police got rid of the comments and the continuous managers did not exceed communicating with the comments on the conversation in the weekday. This is interesting. OpenAI has left to work on the next AI system to rank it better. The power of information. Last year, when ChatGPT became global, OpenAI engineers began working on a new progressive model called Arrakis, despite the fact that OpenAI was preparing to post ChatGPT with a different model now known as GPT-4, which was completed last year. Arrakis company will be allowed to create a chatbot at a lower price. Success with Arrakis will also help show Microsoft how to release large language models quickly, which will be of value. When Monday negotiations end, comparing $10 million and comparing devices. But in the second of 2023, OpenAI shut down the launch of Arrakis after the model did not succeed as usefully as the company expected, according to people's understanding of the subject. The victims may mean that the AI institution has lost a high time and needed to change its resources to develop a different model. Failure also pushed some Microsoft institutions that use commerce technology in their devices. According to a Microsoft employee's knowledge of the subject, Arrakis might enjoy processing the social banks theory for use after it has saved Google's processing of the social banks theory and built some of the fastest growing companies in history. It shows how internet weapons are identified for the internet with difficult to predict weapons. Despite the Arrakis problem has not stolen OpenAI's work this year, the World Bank may feel the impact.
I hope there will be a new impact in the future.
Next year, when the attempt to launch new LLMs devices is awaited. For example, Gemini is almost launching a set of creative weapons that it expects will combat GPT-4. In the case of documents, other inputs, and correct damages, OpenAI continues to launch improvements to continue civil models and launches improvements for civil continuation and launches improvements for civil continuation. For things at the interest, like some people at OpenAI consider that they could be some kind of transaction system. In addition to their phones, due to their ability to write code, get pictures and files, OpenAI started working on Arabic last year, demanding the development of a model that would be present with GPT-4, but it might be able to attack better fully using the greatly known practical learning theory, timing and translation of Mansi Concour. Other AI classifiers like Google have also talked about using sparsity left by OpenAI in the basic design. Arrakis has allowed OpenAI to significantly develop its technology. The company also has a continuation for a certain number of its own networks to run its own programs, they said. Last year, investigators began training on a subject related to the use of training processing phones to help the subject deal with a lot of data so he can learn the circumstances. Timing and translation of Nancy Concour. It will be significantly easier than training GPT-4, people said at first. However, their friends understood that the subject was not well trained to be trained the expected favors. The operation spent about months trying to fix the problems. The foundation decided the operation training process to intervene in training, people said. Despite the setbacks, OpenAI can align its work on Arrakis to others, that is solidarity. Joby, an upcoming model, can analyze or decipher the known phenomena also known as multi-habitat. The end. You can use this information today if these new videos are talking about iOS 17 and macOS. Do things seem strange to you on FaceTime site? This is how to change them. Apple's power. As part of iOS 17 and macOS Sonoma, Apple launched a video key called Reactions. When you manage and assist physically while looking at the camera, a special assumption is shown in the camera clips passing from other people. There are a number of different ideas from speech loops with admiration and admiration to airplane loops, confetti, and darkness cases. Running it through hand operation can show users how they feel better. This can be a fun key when you are continually interacting with friends and family. But there are many times where you might not want the interactions to happen. For example, you don't want the window and keys to show up when you are on a work-related page. In a real example, Matt Howey passed away. He wrote on Mastodon about a situation where his friend was on the Internet Education Council when he requested education. If his friend was fine, he made a highlight to run the fire behind his head. It's really bad that the Internet Education Board is now trying to communicate. Unfortunately, Apple has made the sharing tools ordinarily available to everyone who uses Apple Silicon Mac with macOS Cinema or any opposing device uses iPhone 12 or later with a continuous camera, or on an iPhone running on iOS 17, also featured Link to FaceTime, but she can also use it in other video applications. How to close FaceTime procedures in iOS 17 Open FaceTime Open Control Center, and it is recording the motion from the top side of Face ID device and recording it from the bottom side of Touch ID device. Click on ideas and you'll get a certainty of the camera and look for word interactions. Tap reaction. How to close FaceTime procedures in macOS Cinema. FaceTime is open. Press the video key. And on the keyboard keys, there will be a green and white camera certainty. Click, like, and appreciate. You have nothing today. I will talk to you tomorrow. टेक में ब्राइट गुरुवार 19 अक्टूबर 2023 के लिए घर के लिए आपका स्वागत है। मैं ब्रायन मैकलो। आज क्या क्रिप्टो वर्तमान युद्ध में आतंकवाद के लिए उपयोग किया जा रहा है? नेटफ्लिक्स अच्छी कमाई होती है और मूल्य बढ़ाता है, फिर भी यदि ओपन एआई को एक नई एआई मॉडल पूरी तरह से खराब करना पड़ा और यदि वे फेस टाइम वीडियो प्रतिक्रियाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें कैसे बंद करें। यहां आपने आज टेक की दुनिया में क्या छूटा? जैसा कि मध्य पूर्व में संघर्ष जारी है, आतंकवादी संगठनों द्वारा क्रिप्टो के संभावित उपयोग के बारे में विभिन्न सुर्खियां रही हैं। जो चैनालिसिस है, जो यापजाचन चैनालिसिस, तो शायद नमक का दाना, लेकिन चैनालिसिस का कहना है कि इन रिपोर्टों ने मापदंडों को अधिक महत्व देकर और जो मैंने त्रुटिपूर्ण विश्लेषण कहा का उपयोग किया है के ब्लॉक का उदाहरण देते हुए। हालांकि आतंकवादी वित्त पोषण क्रिप्टो करेंसी लेन देन के तत्व का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो अवैध है। कुछ आतंकवादी संगठनों ने क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके धन इकट्ठा करते, संग्रहित करते और हस्तांतरित करते हैं। शेन एलिस ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, आतंकवादी संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया है और संभावित रूप से आगे भी उपयोग करेंगे पारंपरिक नकदी आधारित विधियों जैसे कि वित्तीय संस्थाएं और शेल कंपनी को ऐसा अपने प्रमुख वित्तीय वाहनों के रूप में। हमास के आतंकवादी हमले के बाद इसराइल पर विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने अनुमान लगाने की कोशिश की है। उस आपत्ति में सन्निहित हो सकने वाले अवैध क्रिप्टो धन का स्तर, सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन बुधवार को सैकड़ों अन्य कानून निर्माताओं के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें हमास के क्रिप्टो का संभावित उपयोग बताया गया, और उन्होंने कहा कि वह प्रेसिडेंट जो बाइडेन के प्रशासन से उत्तर चाहती है। इन ईसतई जर्नलिस्ट का तर्क है कि आतंकवाद से संबंधित धन की मात्रा और प्रवाह का विश्लेषण करने के दो मुख्य घटक होते हैं। यस एंड इन सहते आतंकवादी संगठन के हाथों में सीधे धन की मात्रा और उन सेवा प्रदाताओं की पहचान करने जो धन के संचालन को सुगम बनाते हैं। आतंकवादी वित्त पोषण के लिए हमने इसराइल पर हमले से संबंधित हाल ही के अनुमान देखे हैं। आज तो कुछ टाइम भी डी नसे जो कुछ सेवा प्रदाताओं के लिए सभी प्रवाहों को शामिल करते हैं, आतंकवाद वित्त पोषण से संबंधित कुछ धन को पाने वाले चैन एनालिसिस ने कहा। दूसरे शब्दों में उन कुलों में आतंकवादी वित्त पोषण से सीधे संबंधित नहीं होने वाले धन शामिल है। अप्रशिक्षित नेत्र को तो यह लग सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के $22 मिलियन का धन आतंक वित्त पोषण के लिए इकट्ठा किया गया था, चैनालिसिस ने जारी किया, लेकिन यह अधिक संभावना है कि इन धन का एक छोटा हिस्सा आतंकी गतिविधियों के लिए इरादा रखता था और आशंकित सेवा प्रदाता के माध्यम से संसाधित धन का अधिकांश असंबद्ध थे। $35 मिलियन में जिन पर यह ध्यान केंद्रित करती है। लगभग $450,000 की धनराशि एक आतंकवादी संबंधी वॉलेट से स्थानांतरित की गई थी। सभी लेन देन संबंधी गतिविधि को आतंकवाद से जोड़ना गलत होगा। हालांकि कंपनी कुछ मीडिया आउटलेट में इस्तेमाल होने वाले अनुमानों के प्रति संदेहास्पद है, लेकिन चैनलिसिस ने कहा कि सेवा प्रदाताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण, ये सेवा प्रदाता आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे सुविधाजनक कार्य कर रहे हैं और आतंकवादी वित्त को बाधित करने के लिए उन्हें प्रतिबंधों या अन्य हमलावर ऑपरेशनों के माध्यम से पहुंच से वंचित करना एक महत्वपूर्ण घटक है, यह पोस्ट के अंत में कहा गया। क्रिप्टो देश में भी न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने विंकलवॉस के जेमिना एक्सचेंज पर मुकदमा किया है। लेकिन जिनेसिस और उसकी मात्र कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप पर भी आरोप लगाया, ये दावा करते हुए कि ये कंपनियां 230,000 निवेशकों को धोखा देती हैं $1 अरब से अधिक। यहां व्यंग्य है कि यदि आप कुछ महीनों पहले याद करते हैं तो विंकलवाई और DCG बड़े सार्वजनिक झगड़े में थे एक दूसरे को धोखाधड़ी करने का आरोप लगाने। टेक्रंच का उदाहरण देते हुए, मुकदमा ने जीनेसिस पूर्व CEO के खिलाफ भी आरोप लगाए। सिरो माइकल मोरो और DGC के संस्थापक और CEO बैरी सिल्बर्ट को $1.9 बिलियन के नुकसान छिपाने और उद्धरण निवेशकों और सार्वजनिक को ठगने के लिए प्रयास करने के लिए कोशिश की गई। सरकार के बयान के अनुसार तीनों कंपनियों से लगभग 230,000 निवेशक प्रभावित हुए थे। जांच का दावा है कि जेमिनी ने अपने निवेशकों से झूठ बोला कि उसके निवेश कार्यक्रम जेमिनी अर्न निम्न जोखिम निवेश है, जबकि ऐसा नहीं था। मुद्दा याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेमिनी ने जानते हुए भी जेनेसिस के अर्न अधिकतम सुरक्षित नहीं थे और एक समय में एक संस्था के साथ अधिकतम संकेंद्रित थे, सैम बैंकमैनफ्रीड का अलामेडा। लेकिन निवेशकों को यह जानकारी प्रदान नहीं की गई। एजेंसी ने यह कहते हुए इस धोखाधड़ी को उद्धृत किया कि यह क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में कम नियमित कार्यकर्ताओं द्वारा हानि पहुंचाने का एक और उदाहरण है। जेम्स ने एक बयान में कहा, जून 2022 में जीनेसिस के सबसे बड़े अर्नी ने क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरोज कैपिटल पूंजी डॉलर के अरबों डॉलर पर चुकौती नहीं कर सकी और जुलाई में बाद में दिवालिया घोषित की गई। उस समय के आसपास जेनेसिस ने बेबल फाइनेंस एक अन्य ऋणदाता से $100 मिलियन से अधिक की हानि उठाई। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कहा इसके कुल नुकसान $1.1 बिलियन से अधिक हो गए हैं। आरोप ऐसे समय में आते हैं जब बैंकमैन फ्रीड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अलामेडा के सह संस्थापक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित 7 आरोपों के लिए ट्रायल पर हैं। नवंबर में FTX और अलामेडा ने दिवालिया की अर्जी दाखिल की जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में हुई तबाही ने जनवरी में दिवालिया होने वाले जीनेसिस को गिरा दिया। व्हाट्सएप आने वाले सप्ताहों में एंड्रॉयड पर 2 खातों के बीच स्विच करने की योजना बना रहा है। दूसरे खाते के लिए फिर भी अलग फोन नंबर और SIM कार्ड की जरूरत होगी। वज का उद्धृत करते हुए यदि आप 2 अलग अलग व्हाट्सएप खातों का उपयोग करते हैं तो आप जल्द ही केवल एक उपकरण से दोनों तक पहुंच पा सकेंगे। मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को घोषणा की कि व्हाट्सएप एंड्रॉयड और गूगल पर खातों के बीच स्विच करने की क्षमता ला रहा है और आपको एक अतिरिक्त उपकरण को घसीटने या लगातार अपने खाते से लॉग आउट करने की जरूरत नहीं होगी इसे कर सकने के लिए। यह नया विशेषता आपके संवादों को अनेक खातों में प्रबंधित करना आसान बनाना चाहिए, जैसे कि यदि आपके पास काम के लिए एक व्हाट्सएप खाता है और दूसरा दोस्तों और परिवार के सदस्यों से संदेश भेजने के लिए। यह आने वाले सप्ताहों में रोल आउट हो रहा है। मेटा नोट्स की आपको अभी भी एक अलग फोन नंबर और सिम कार्ड की जरूरत होगी। यदि आप दूसरे खाते की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको एक फोन की जरूरत होगी जो मल्टी सिम या eSIM स्वीकार करता हो। आपको दूसरे फोन या उसके सिम कार्ड की भी जरूरत होगी ताकि आप संदेश प्राप्त कर सकें। व्हाट्सएप द्वारा SMS के माध्यम से भेजे गए एक समय के पासकोड से आपके दूसरे खाते तक पहुंच प्राप्त की जाएगी। इस प्रारंभिक सत्यापन के बाद ऐप दोनों खातों के लिए काम करना जारी रखेगा। दूसरे उपकरण या सिम के बिना व्हाट्सएप की प्रवक्ता एली हेड्रिक कहती हैं उद्धरण समाप्त। नेटफ्लिक्स ने कल आय की घोषणा की और वे अच्छे प्रतीत होते हैं। वार्षिक आधार पर राजस्व 7.8% बढ़ा और यहां मुख्य संख्या वैश्विक भुगतान योजना वार्षिक आधार पर 10.8% बढ़ी थी। विश्लेषकों के अनुमानों को हरा दिया। नेटफ्लिक्स के शेयर आज सुबह प्री मार्केट ट्रेडिंग में 1500% से अधिक चढ़े थे, लेकिन इसके अलावा नेटफ्लिक्स अपने बेसिक प्लान की मूल्य वृद्धि कर रहा है 9.99 से 11.99 प्रति महीने तक। इसने अपनी प्रीमियम योजना की कीमत 19.99 से 22.99 तक बढ़ाई है और यूके और फ्रांस में अपनी कुछ कीमतों में वृद्धि की है। मूल्य वृद्धि स्ट्रीमर्स के प्रयासों का संकेत है लाभ योग्यता में सुधार करने का और ग्राहकों को कम मासिक सदस्यता शुल्क से बाहर करने का, जो उपयोगकर्ताओं को महंगे केबल बंडल से दूर ले गया था स्ट्रीमिंग के शुरुआती दिनों में। नेटफ्लिक्स ने अपनी तीसरी तिमाही आय की रिपोर्ट में कहा कि इसकी सदस्य प्रति औसत आय पिछले 18 महीनों में सीमित मूल्य वृद्धि के कारण वर्ष दर वर्ष 1% घटी है। अपने विकास का एक उच्च प्रतिशत उन देशों से आ रहा है जहां यह योजनाओं के लिए कम शुल्क लगाता है और अपने सदस्यताओं के मिश्रण में परिवर्तन। यह 2024 में मूल्य वृद्धि और विज्ञापन राजस्व में उम्मीद की वृद्धि के आधार पर प्रति सदस्य औसत राजस्व में सुधार की उम्मीद कर रहा है। नेटफ्लिक्स ने इस साल अपने कई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर किया है जिनमें डिज्नी और वार्नर ब्रोस डिस्कवरी जैसी कंपनियां शामिल हैं। वे बीमार धरोहर केवल व्यवसायों और महंगे स्ट्रीमिंग के लिए संक्रमण के साथ सामना कर रहे हैं जिसने उनके उत्पादन अनुसूचियों को बाधित किया है। कंपनी तिमाही के अंत में 7.715 करोड़ भुगतान किए गए सदस्यों। फिर से मुझे नहीं पता कि तकनीकी छुट्टियां फिर से क्यों डटी हुई हैं। मैं केवल आपको सुर्खियों में देख रहा हूं क्या दिख रहा है। नोकिया की योजना है करीब 14,000 नौकरियां काटने की, जो इसकी 26,000 कर्मचारियों का करीब 16% है। 2023 के T3 नेट बिक्री 20% वार्षिक आधार पर घटने के बाद $4.85 बिलियन और वर्ष वर्ष 79% कम होने पर लाभ $133 मिलियन। CNBC का उदाहरण देते हुए, दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार उपकरण निर्माताओं में से एक नोकिया को धीमे वैश्विक अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय की कमियों से सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा बनाया गया नोकिया की सबसे बड़ी इकाई द्वारा बिक्री या इसके मोबाइल नेटवर्क का व्यापार है वार्षिक आधार पर 24% की कमी। 216 अरब यूरो के साथ विभाग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 64% की कमी हुई। नोकिया ने कहा कि इसका मुख्य कारण उत्तरी अमेरिका में होने वाली कमी थी। कंपनी ने भारत जैसे प्रमुख बाजार में बिक्री की मात्रा का वर्णन भी किया। यह संयमित 5G अगली पीढ़ी का मोबाइल इंटरनेट है जो तेज गति का वादा करता है और नोकिया भारत की इस प्रौद्योगिकी के उत्क्रमण का हिस्सा है। लागत कटौती उपाय इस साल अमेरिका में भी हुए हैं, खासकर वेराइजन और AT&T जैसे कैरियर्स के साथ। इस साल की शुरुआत में नोकिया की प्रतिद्वंद्वी एरिक्सन ने 8,500 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना की घोषणा की। यह भी एक लागत कटौती योजना का हिस्सा है। यह फिर हो गया। माइक हकबी, लिसा टेर कुर्स्ट और अन्य लेखक मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। बुक्स 3 डेटा सेट के अधिक उपयोग को लेकर, जिसमें पायरेटेड बुक्स शामिल हैं। उन्होंने उनके LLMs को ट्रेन करने का उदाहरण दिया रॉयटर्स का उदाहरण देते हुए। माइक हकबी और प्रमुख क्रिश्चियन लेखक लेसातो कोशिश करते हुए एक समूह लेखकों के सहित पूर्व आरकांसा के गवर्नर मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग पर उनके काम का बिना अनुमति के कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टमों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। मंगलवार को दायर किया गया प्रस्तावित सामूहिक कॉपीराइट मुकदमे ने कहा कि कंपनियों ने विवादास्पद बुक्स 3 डेटासेट का उपयोग किया, जिसमें लेखकों ने कहा कि शामिल है हजारों पायरेटेड किताबें उनके विशाल भाषा मॉडल्स को मानव प्रेरणाओं का उत्तर देना सिखाने के लिए। मुकदमा ने AI अनुसंधान समूह एलुथर AI को कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया कि उसने कंपनी के सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की गई डेटा प्रदान किया। इसमें बुक 3 भी शामिल है। एक ब्लूमबर्ग प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि कंपनी अपने बड़े भाषा मॉडल ब्लूमबर्ग GPT के वाणिज्यिक संस्करणों को प्रशिक्षण देने के लिए बुक्स 3 का उपयोग नहीं कर रही थी, हालांकि उसने अपने अनुसंधान मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए डेटासेट का उपयोग किया। माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और मेटा के प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुकदमे पर टिप्पणी करने का अनुरोध तुरंत जवाब नहीं दिया। यह दिलचस्प है, ओपन AI ने एक अगली पीढ़ी का AI मॉडल ड्रॉप करना पड़ा जिसे वह अधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन कर रहा था। जानकारी का उदाहरण देना, पिछले साल जब ChatGPT एक वैश्विक सनसनी बन गया था, उस समय ओपन AI के इंजीनियरों ने अरकिस नामक एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल पर काम शुरू किया था। हालांकि ओपन AI तैयार कर रही थी वर्ष की शुरुआत में पूरा किया गया एक अलग मॉडल के साथ ChatGPT को बढ़ाने के लिए, अब जिसे GPT-4 कहा जाता है। आगामी अराकिस मॉडल कंपनी को चैटबॉट को कम खर्च में चलाने की अनुमति देगा। अराकिस के साथ सफलता ओपन AI को यह भी दिखाने में मदद करेगी कि माइक्रोसॉफ्ट को कितनी तेजी से वह विशाल भाषा मॉडल्स बना सकती है, जो मूल्यवान होगी। दोनों कंपनियां $10 अरब के निवेश और उत्पाद सौदे की वार्ता समाप्त करते हैं, लेकिन 2023 के मध्य तक ओपन AI ने अराकिस लॉन्च को निरस्त कर दिया था क्योंकि मॉडल उतनी कुशलता से काम नहीं कर पाया जितनी कंपनी ने अपेक्षित की थी। जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार यह ठोकर इसका मतलब था कि ओपन AI का कीमती समय खो गया था और उसे अपने संसाधनों को एक अलग मॉडल विकसित करने की ओर ले जाने की जरूरत थी। असफलता ने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ अधिकारियों को निराश किया जिसने स्टार्टअप की तकनीक और उत्पादों का उपयोग करने के अधिकार के लिए भुगतान किया था। एक माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी के ज्ञान के अनुसार अराकिस की असफलता ओपन AI के अपराजयता के आभास को भेद सकती है, जिसने AI पायनियर गूगल को नम्र किया और इतिहास में सबसे तेज बढ़ते सॉफ्टवेयर व्यवसायों में से एक बनाया। यह दिखाता है कि AI का सीमांत कैसे अनुमानित से कठिन जोखिमों से भरा होता है। हालांकि अराकिस समस्याओं ने इस साल ओपन AI के व्यापार को धीमा नहीं किया, पर स्टार्टअप को महामारी के प्रभाव का अनुभव हो सकता है। जैसा कि नए LLMs को लॉन्च करने की दौड़ तेज होती जा रही है, उदाहरण के लिए जिमिनी की शुरुआत करने के करीब है एक सेट AI मॉडल्स जिसे उम्मीद है कि वह कोडिंग और अन्य क्षमताओं में GPT-4 को हराएगी और प्रतिक्रियाओं की सटीकता। अपने हिस्से में OpenAI ने अपने उद्योग अग्रणी मॉडल में सुधार जारी रखा है जिसमें छवियों को व्याख्या करने की क्षमता शामिल है और नवंबर में नई सुविधाओं की घोषणा करने की योजना है। LLMs जैसे उत्पादों को ChatGPT के तहत समर्थन देते हैं और OpenAI में कुछ लोग उन्हें एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में होने की संभावना भी देखते हैं। उनकी कोड लिखने, छवियों को समझने और फाइलें पुनः प्राप्त करने की क्षमता के कारण व्यक्तिगत उपकरणों के लिए भी। OpenAI ने गत फल में एक मॉडल विकसित करने की आशा में अराकिस पर काम शुरू किया था जो GPT-4 के बराबर होता, अधिक लेकिन स्पेक्टर नामक एक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट का लाभ उठाकर अधिक कुशलतापूर्वक चला सकता था। लोगों में विरलता, उन्होंने कहा। अन्य AI विकासकर्ता जैसे कि गूगल ने भी स्पार्सिटी के उपयोग के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा की है, जिसे OpenAI ने पहले के सॉफ्टवेयर में सफलतापूर्वक शामिल किया था। अराकिस ने OpenAI को अपनी प्रौद्योगिकी को और अधिक व्यापक रूप से लागू करने की अनुमति दी होती। जैसा कि कंपनी के पास अपने सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए कुछ सीमित संख्या में विशेषज्ञ सर्वर चिप थे, इस वसंत के आसपास OpenAI के अनुसंधानकर्ताओं ने मॉडल की प्रशिक्षण शुरू किया जिसमें उन्नत कंप्यूटिंग हार्डवेयर का उपयोग करके मॉडल को भारी मात्रा में डेटा प्रसंस्करण करने में मदद मिलती है ताकि यह पैटर्न सीख सके। कंपनी ने इसकी उम्मीद की थी GPT-4 की प्रशिक्षण प्रक्रिया से कहीं सस्ता होगा, लोगों ने कहा। शुरुआत में हालांकि कर्मचारियों ने महसूस किया कि मॉडल उम्मीद के मुताबिक लाभ उठाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रदर्शन नहीं कर रहा था। कर्मचारियों ने लगभग एक महीने तक मुद्दों को ठीक करने की कोशिश की। OpenAI की वरिष्ठ नेतृत्व ने इसे प्रशिक्षण देना बंद करने का निर्णय लिया, लोगों ने कहा। निराशाजनक स्थिति के बावजूद OpenAI अपने अराकिस पर काम को अन्य मॉडलों में शामिल कर सकता है जिसमें शामिल है गोबी, एक आगामी मॉडल जो पाठ या दृश्यों को उत्पन्न कर सकता है या विश्लेषित कर सकता है, जिसे मल्टी मॉडल भी कहा जाता है। उद्धरण समाप्त। आखिरकार आज समाचार जो शायद आप उपयोग कर सकते हैं अगर वह नए वीडियो प्रतिक्रियाएं जो iOS 17 और macOS Sonata में आईं, अगर आपके फेस टाइम्स में चीजें अजीब बना रहे हैं तो यहां आप उन्हें कैसे बंद करते हैं। Apple Insider पर जाएं। iOS 17 और macOS Sonoma के भाग के रूप में Apple ने Reactions नामक एक वीडियो सुविधा पेश की। जब आप कैमरा की दृश्य के दौरान एक इशारा करते हैं और उसे धारण करते हैं तो अन्य लोगों द्वारा देखे जाने वाले कैमरा फीड में एक विशेष प्रभाव प्रदर्शित होता है। वहाँ काफी सारे प्रभाव हैं जो अंगूठा ऊपर और अंगूठा नीचे आइकन वाले वाणी बुलबुले से लेकर उड़ते गुब्बारों, कन्फेटी और तूफानी बारिश की स्थितियों तक हैं। हाथ के इशारों द्वारा ट्रिगर किए गए उन्हें उपयोगकर्ताओं को एक अधिक संवेदनशील छवि के साथ अपनी भावनाओं को दिखाने की अनुमति दी गई है। यह एक संभावित रूप से मनोरंजनात्मक सुविधा है जब यह दोस्तों और परिवार के साथ कॉल में सक्रिय होता है, लेकिन कई अवसर होते हैं जहां आप शायद चाहें कि प्रतिक्रियाएं न हों। उदाहरण के लिए, आपको अचानक कार्य संबंधी सम्मेलन कॉल में जब आप होते हैं तो फायरवर्क्स और कन्फेटी के चारों ओर दिखाई नहीं देना चाहिए। एक वास्तविक जीवन उदाहरण में मैट हॉवी मैसेडन के बारे में एक उदाहरण लिखा जहां उनके एक दोस्त का ऑनलाइन थेरेपी सत्र था। जब थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या वह ठीक है, तो दोस्त ने डबल अंगूठा ऊपर किया, जिसके पीछे आतिशबाजी हुई। यह इतना खराब है कि ऑनलाइन चिकित्सा सत्र अब एक चेतावनी संवाद के साथ शुरू होता है। हावी लिखता है, दुख की बात है, एप्पल ने मैकओएस सोनोमा या बाद का उपयोग करने वाले किसी भी एप्पल सिलिकॉन मैक के लिए प्रतिक्रियाशील तत्वों को डिफॉल्ट रूप से सेट किया हुआ है, या किसी भी संगत मैक का उपयोग करके आईफोन 12 या बाद के साथ सतत कैमरा, या iOS 7 चलाने वाले आईफोन पर यह सुविधा मुख्य रूप से फेसटाइम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसका उपयोग अन्य वीडियो आधारित एप्स में भी किया जा सकता है। iOS 7 में फेसटाइम प्रतिक्रियाओं को कैसे बंद करें? फेसटाइम खोलें, नियंत्रण केंद्र खोलें, जो एक है फेस आईडी उपकरणों के लिए प्रदर्शन के शीर्ष दाएं से नीचे की ओर स्वाइप कार्रवाई, और स्पर्श आईडी मॉडलों के लिए नीचे की ओर स्वाइप करें। इफेक्ट्स पर टैप करें जिसमें एक कैमरा आइकन होगा, और शब्द प्रतिक्रियाएं दिखाएं, प्रतिक्रिया टैप करें। मैकओएस सोनोमा में फेस टाइम प्रतिक्रियाओं को बंद करने के लिए फेस टाइम खोलें, मेनू बार में वीडियो मेनू पर क्लिक करें, यह आमतौर पर हरा और सफेद कैमरा आइकन होता है, क्लिक प्रतिक्रियाएं और उद्धरण। आजा के लिए कुछ नहीं, कल बात करेंगे।
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
CarMax is putting peace of mind back in car shopping by putting you in the driver's seat to find a ride that's right for you. Because at CarMax, we believe you shouldn't just settle for a car. You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality, so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be.
Hi, I'm the Tech Meme Ride. Today is 2023 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 当前的战争中，加密货币是否被用于恐怖主义 ？Netflix 在 Crowdin 出个首页那边再次 take it。如果 OpenAI 不得不完全放弃新的 AI 模型，那么 FaceTime 视频反应是否让你感到烦恼呢 ？Robert 说的就我跟 Sabi 他们，这是你那个电台一块给是各种错过的东西。随着中东冲突的事实更新，你。有的观众听不出之所谓使用加密货币的各种头条新闻者，连分析你这都连分析，所以有时候有一点怀疑。但是 Chain Analysis 说这些报告过度夸大了指标，并使用了他们所称的有缺陷的分析引述该集团的，所以没有反应不质疑最近执政了已经失效的加密货币高依恋的意识部分，尤其恐怖组织使用加密货币抽机储存和转移资金，现在那些七百克万军中的刀，恐怖主义组织那些商已经使用过，而且可能会继续使用传统的法定货币方法与金融机构。LDTRSDL 是用空壳公司作为融资工具，在哈马斯对以色列的恐怖袭击后，各种媒体纷纷进行估算，可能以别批准的带头攻击行动的非法加密资金的水平。查斯瑞恩伊丽莎白沃伦。周三，100多名立法者引述了《华尔街日报》关于哈马斯所谓使用加密货币的报告，他就表示 ：“Kramer 从 Q 拜登总统的政府内里得到答案。”詹斯·艾利斯认为呢，这次分析恐怖主义相关资金的两河流动有两个关键组成部分：资金的量额会碰触组织手中的资金，并决定与之有关的资金流动和媒体共享。得到最新不认识，我们已经看到了一些关于对以色列的攻击的近期估计。似乎包括了对某些服务提供上的所有流量。Chainalysis 称 ，Gitter 也有一些与恐怖主义融资有关的资金。 换句话说，这些总数包括了并非明确与恐怖主义资金有关的资金。对于卫星训练的验证，可能会认为 Chainalysis 继续表示已经为恐怖主义筹集了解值8200万美元的加密货币。那更有可能的是，这些资金中只有一小部分是用于恐怖活动的，大部分资金都通过了涉嫌的服务提供商 Mr. Greenlands。 该公司估计他关注的8200万中大约3300万美元给自己跟情恐怖分子的 Kimbo 准确的，这就意味着其实所有的交易活动都与恐怖主义有关，是不正确的。虽然该公司对一些媒体中使用的估算表示怀疑，但 Chainalysis 表示不应忽视服务提供商的作用。第一年后，这些服务提供者通过终端了解支持恐怖主义，通过制裁或其他进攻性操作切断恐怖分子的访问渠道，是挖掘恐怖分子财务的重要组成部分，这在最后的帖子中有所提及。在加密领域呢，纽约州总检察长 Letitia James 起诉了 Winklevoss 的 Gemini 交易所，但也指控创世纪及其母公司数字货币集团声称这些公司欺诈了23万投资者。 No Sarah is a year Arabian 用人分析的时代，如果你还记得几个月前 Winklevoss 和 DCG 之间的代工科政策，我想起这些对于方开机
Into TechCrunch。
大家告诉我在外人对 Genesis 前 CEO 提出了指控，所以谢洛特迈克尔外落 DGC 的创始人兼 CEO 巴利希尔伯特试图隐藏11亿美元的损失，并引用欺诈投资者和公众。正不上面指控的三个公司影响了大约有 resources 7000名投资者。调查的声称在的双子座对投资者撒谎，将其投资项目双子座赚钱成为低风险投资，但实际上并非如此。该诉讼声称Gemini 知道创世纪的贷款未得到充分担保，并且在某一点上与一个实体高度集中 Sam Bankman-Fried Alameda。 他们就向投资者披露这些信息，该机构表示这个欺诈行为是有一个通过不受管制的加密货币行也造成伤害的恶劣行为。 James 在一份声明中说，在 Great Senior Aaron and Lee Weiss Genesis 的最大借款者之一加密对冲基金 Three Arrows Capital 在那之后首度违约了44亿美元的贷款，并在7月后申请破产。在这个时候 Genesis 又从另一个借款人 Babel Finance 那里损失了超过1亿美元。纽约州的总检察长的表示呢，财务总损失已超过11亿美元。这些指控正值 Bankman-Fried FTX 加密货币交易所和 Alameda 加密货币交易公司的联合创始人因涉及欺诈和洗钱的起向指控而接受审判的时候。在 FTX 和 Alameda 于11月申请破产后，接下来的市场混乱使 Genesis 倒闭，他在1月申请破产。WhatsApp 计划在未来几周内让用户在 Android 上切换两个账户，但是第二个账户仍然需要一个独立的电话号码和 SIM 卡。如果你是用两个不同的 WhatsApp 账户，据 The Verge 报道，你可否就另开一个设备上使用两者。 Meta CEO Mark Zuckerberg 周四宣布 WhatsApp 正在推出在 Android 和 Google 之间切换账户的功能，你将不需要携带额外的设备或者持续推出你的账户来实现这一点。这个新功能应该能让你更容易的在多个账户之间管理你的对话，比如说如果你有一个 WhatsApp 账户用于工作，另一个用于给朋友和家人发送消息，这将在未来几周内推出。 Meta 注意到你仍然需要一个单独的电话号码和 SIM 卡，如果你想建立第二个账户，你需要一个能接受多卡或者电子 SIM 的电话，你还需要第二部手机或者 SIM 卡来接受。 WhatsApp 会通过短信发送一次性验证吗？一边在不同的设备上使用您的第二个账户。通过这一初步验证该应用将继续为两个账户服务。唯独第二个设备我是 SIM 卡WhatsApp 发言人 Ellie Hedrick 说 this。 昨天呢 Netflix 新播的收益可以带来相当不错，年度收入增长开跌 8%， 并且更要精密数字在这里，全球付费会员年比增长 10%。 AC Ready 聊本 Gears 的预测格今天早晨在盘前交易中 Netflix 的股票涨幅超过 23%。 大家有对应的事实， Netflix 正式把基本计划的美国价格从9.9美元涨到每月11.99美元。它的高阶段计划从24.99美元涨到22.99美元，以及在英国和法国的一些价格。价格上涨是流媒体努力提高盈利能力和让用户摆脱的月订阅费用的信号，这些费用将用户从昂贵的有线电视套餐中吸引出来。在流媒体一个初期， Netflix 在其第三季度财报中表示，由于过去18个月的价格增加优先，其每位会员的平均收入同比下降了一倍。这增长的较大比例来自于计划收费较低的国家，以及其订阅混合的变化。鉴于价格上涨和预期的广告收入增长，预计到2024年每位会员的平均收入将有所改善。该这边 Netflix 的表现有一期衰弱竞争对手 Rudy 是李慧华的兄弟发现，他们正在努力解决老旧的有线电视业务和过渡到流媒体的高昂费用，以及打乱了他们的生产计划的罢工。该公司一次结束了季度21 Search IT LZYYM 付费订户。第一次我不知道为什么科技可以让脑袋掉，我只能搜索你我最头条中看到的。多家亚洲华泰也将拖带24000个职位，约占其80%亿人黑名员工的 16%。在报告2023年第三季度净销售额同比下降20%之后，今年度收入为49.8亿美元，年度利润为1.33亿欧元，同比下降42%。应用 CNBC， 诺基亚是全球最大的电信设备制造商之一，但由于全球经济放缓和基础设施开支减少而面临阻力啊。为动员人生制造，来自诺基亚收入最大的单位开个移动网络业务的销售，同比下降24%。格格老弟都奥特加斯开播民国时的英格的流入收入同比减少3%。诺基亚表示，这个国家是由北美的消化驱动的，公司还描述了在关键市场印度的销售量。说起来，他没有 Mr. Dinger 唱首歌，对。Chris G 先生都提出对个下一代移动互联网，诺基亚是印度退出该技术的一部分。今年在美国也进行了削减成本的措施，特别是像 Verizon 和 AT&T 这样的运营商。今年做的收购 ，Rocket Air 的竞争对手 Ericsson 宣布计划裁员8300名员工。这次也是 ESTM 削减成本的计划。还有发生的麦克哈卡比、丽莎特基斯特和其他作者正在起诉 Meta、 微软和彭博社，对于使用包含到半数级的 Books 深数据集来训练他们的 LLMs， 引用绿头社的报道。一群作家，包括前的肯瑟州州长麦克哈卡比和畅销机都叫做加里萨，都来诅咒，在纽约联邦法院提起了一项诉讼，指控 Meta、 微软和彭博社在未经许可的情况下使用他们的工作来训练人工智能系统。周二提出的集体诉讼版权诉讼中说，这些公司使用了有争议的 Book 3数据集，作者们说该数据集包含该诉讼犯指控 AI 研究小组 Luther AI 侵犯版权，因为他们据称提供了用于训练公司系统的数据，这包括第三本书。彭博社的一位发言人周三说，公司并未使用 Books 3来训练其商业版本的大语言模型彭博 GPT， 所以我等我使用的高数据机来训练体研究模型。微软的一位微发言的 Google for Bill 评论 Meta 的代表在周三的诉讼上没有理解回应评论请求。这个有趣，OpenAI 不得不放弃了正在设计的下一代 AI 模型，它被设计得更加高效。Gitsen 用这 Gitsen 谁？和年代大约在 ChatGPT 成为全球轰动的时候 ，OpenAI 的工程师开始研发一个新的人工智能模型，代号为 Arrakis。虽然 OpenAI 正在准备为了提升聊天 GPT， 现在用了一个现在被称为 GPT 4的不同模型，它在今年早些时候已经完成。即将推出的 Arrakis 模型将是公司能以更低的成本运行这个聊天机器人。如果 Arrakis 成功，也不会帮助 OpenAI 向 Microsoft 展示任何多快的创建连续的大型语言模型，这回很牛逼子。两家公司完成了一项100亿美元的投资和产品交易的谈判。MIT Dodgers 13年中 K OpenAI 在微信有限售了不如公司的 K 号。The Curse of Arrakis 的发布，据了解情况的人士透露，这个事物意味着 OpenAI 失去了宝贵的时间，需要将其资源转向开发不同的模型。这次失败也让一些微软的高官们感到失望，他们付费使用这家初创公司的技术和产品。一位知情的微软员工说， Arrakis 的挫败可能会冲击 OpenAI 的无敌光环，因为他在前讯的 AI 先去 Google 之后建立了历史上增长最快的软件业务之一。这牵扯了 AI 的前沿充满了难以预测的神经。虽然 Arrakis 的问题并没有减缓 OpenAI 今年的业务，但初创公司可能会感受到疫情的影响。 去找八宝山 LLMs 的竞赛结局，连读竞赛也都跟成中。例如，他们正在接近启动 Gemini。第二，对任何一套 AI 模型，他们希望在编码和其他能力以及回应的准确性上超越 GPT Sear。OpenAI 仍然在不断改进企业界领先的模型，包括解释图片的能力，并计划在11月宣布一系列新功能。LLMs 支持诸如 ChatGPT 之类的产品。一些 OpenAI 的人也将他们是唯有可能成为一种操作系统，包括个人设备，因为他们能够编写代码、理解图像并检索文件。OpenAI 从去年秋天开始研究 Arrakis， 希望开发一个与 GPT-4 相当的模型，在顶多拿开一层优秀的运行。部分还通过利用一个被称为 Spectre 的机器学习概念，细数的人们。如果各等其他 AI 开发者也公开讨论了他们使用系属性， OpenAI 在早期软件中成功地加入了这一特性。Arrakis 本来会允许 OpenAI 更研发的推出器技术，因为公司可以访问数量有限的专门 firmware 器芯片来支持其软件。大约在这个春天， OpenAI 的研究人员开始训练模型，只设计使用现今的计算硬件帮助模型处理大量数据，以便它可以学习模式。公司与其他人们表示的与训练 GPT-4 的过程相比，早期员工意识到该模型的性能不足以获得预期的效益，价格会便宜得多。人工大约花了一个月的时间试图解决问题。OpenAI 的高级领导决定停止训练。人们说，该关闭的交错在 OpenAI 仍然可以刚替代 Arrakis 的工作融入其他模型。不过，个别中期将推出的模型可以生成或分析文本以及视觉效果，也被称为多模态。这算引起。如果你喜欢 iOS、Citroën、macOS、Sonata 的嘅新视频分享空档，即可能会有用。Usequad 带电带你的 FaceTime 中给你带来了尴尬，这就是你关掉他们的方法。Strewn 的香水的 mod 作为 iOS 17和 macOS Sonoma 的一部分，苹果引入了一个名为反应的视频功能。当你在摄像头视野内执行并保持手势时呢，其他人看到的摄像头画面中会显示出特殊效果。效果有很多，包括带有点赞和点彩图标的演讲气泡，到漂浮的气球材质和暴风雨条件。通过这次一方发现，他们值得让用户也更加强化的图像展示他们的感受。当他的与朋友的和家人的通话中活跃时，这可能是一个娱乐性的功能，但有很多情况下你可能并不希望反应发生。例如是当地的一个工作相关的会议电话中，你不希望突然间有烟火和物材之血出现在你周围。那是一个真实的例子中 Matt Howey， 他在马其顿写了一篇关于他的一个朋友在网上治疗时的情况。当治疗师问他是否没事时，朋友做了一个双手竖起大拇指的动作，红发了他头后的烟花效果。情况越来越糟糕，一直有他先治疗未完，现在都开始有更高对话后意识到。原来的是的，对于使用 macOS Sonoma 我看过版本的 Apple Silicon Mac 的用户 Apple Morgan Search 的反应元素，或者是用 iPhone 12或更高版本的连续摄像头的任何兼容 Mac， 我是在运行 iOS 17的 iPhone 上。这个功能也主要与 FaceTime 相关联，但他们也可以在其他基于视频的应用中使用。如何在 iOS 17中关闭 FaceTime 反应，打开 FaceTime， 打开控制中心，这是一个对于 Member ID 设备的传统视频的右上方向下滑动，对于红麦 ID 模型从底部上上滑动。你点击超过的，你会有一个摄像头图标并显示出反应这个词。Increment Clock， 如果在 macOS Sonoma 中关闭 FaceTime 反应功能，打开 FaceTime。点击菜单的整个菜单菜单的通常也是一个绿色和白色的摄像头图标。电视反应和因素。各位今天没有这个事，明天不联系。
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Willkommen bei Tech Meme Ride zu Hause für Donnerstag, den 19. Oktober 2023. Ich bin Brian McCullough. Heute geht es um die Nutzung von Krypto für den Terrorismus im aktuellen Krieg. Netflix hat gute Einnahmen und erhöht die Preise wieder. Was bedeutet es, wenn OpenAI ein neues KI-Modell komplett verwerfen musste und wenn diese FaceTime-Videoreaktionen Sie stören? Hier werde ich Ihnen sagen, wie Sie sie ausschalten können. Hier ist, was Sie heute in der Welt der Technik verpasst haben. Da der Konflikt im Nahen Osten weitergeht. Es gab verschiedene Schlagzeilen über den angeblichen Gebrauch von Krypto durch terroristische Organisationen. Chainalysis, Sie wissen Chainalysis, also vielleicht ein Körnchen Salz, aber Chainalysis sagt hier, diese Berichte hätten die Metriken überbewertet und das verwendet, was sie als fehlerhafte Analyse bezeichneten. Zitieren des Blogs. Obwohl die Finanzierung von Terrorismus nur einen sehr kleinen Teil des bereits sehr kleinen Teils des illegalen Kryptowährungstransaktionsvolumens ausmacht. Einige terroristische Organisationen sammeln, speichern und überweisen Gelder mit Kryptowährung. Shane Ellis hat in einem Blogbeitrag geschrieben, terroristische Organisationen haben historisch gesehen traditionelle Fiat-basierte Methoden genutzt, wie Finanzinstitutionen, und werden dies wahrscheinlich auch weiterhin tun. Und Mantelgesellschaften als ihre primären Finanzierungsfahrzeuge? In der Folge des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel haben verschiedene Medien versucht, eine Schätzung vorzunehmen, das Ausmaß an illegalen Kryptofonds, die möglicherweise in die Offensive geflossen sein könnten. Senatorin Elizabeth Warren. Zusammen mit mehr als 100 anderen Gesetzgebern zitierte man am Mittwoch einen Bericht des Wall Street Journal über die angebliche Verwendung von Krypto durch die Hamas. Und sagte, sie wolle Antworten von der Regierung von Präsident Joe Biden. Jane Ellis argumentiert, es gibt, Zitat, zwei Schlüsselkomponenten zur Analyse des Volumens und Flusses von terrorismusbezogenen Geldern, die Mittel direkt in den Händen einer terroristischen Organisation quantifizieren und die Dienstleister identifizieren, die die Bewegung von gebundenen Geldern erleichtern, zur Terrorismusfinanzierung beitragen. Wir haben gerade kürzliche Schätzungen zum Angriff auf Israel gesehen, die anscheinend alle Flüsse zu bestimmten Dienstleistern einschließen. Das hat einige Gelder erhalten, die mit der Finanzierung des Terrorismus in Verbindung stehen, sagte Chainalysis. Mit anderen Worten, diese Summen enthalten auch Mittel, die nicht explizit der Terrorismusfinanzierung zugeordnet sind. Für das ungeübte Auge könnte es den Anschein haben, dass 82 Millionen Dollar an Kryptowährungen für die Finanzierung des Terrors gesammelt wurden, fuhr Chainalysis fort. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass ein kleiner Teil dieser Gelder für terroristische Aktivitäten bestimmt war und die Mehrheit der Gelder über den mutmaßlichen Dienstanbieter verarbeitet wurde. Waren nicht verwandt. Drucker Unternehmen Schätzerweise, er ist sich auf 82 Millionen konzentriert. Ungefähr 450.000 Dollar wurden von einer terrorbezogenen Geldbörse überwiesen. Wurde hinzugefügt, dass es wäre falsch anzunehmen, dass alle Transaktionsaktivitäten mit Terrorismus zusammenhängen. Obwohl das Unternehmen skeptisch gegenüber Schätzungen ist, die es in einigen Medien verwendet hat, betonte Chainalysis, dass die Rolle der Dienstleister nicht ignoriert werden sollte. Zitat, diese Dienstleister unterstützen den Terrorismus, indem sie als Vermittler auftreten und den Terroristen den Zugang zu ihnen durch Sanktionen oder andere offensive Operationen abzuschneiden, ist eine wichtige Komponente zur Störung der Terrorismusfinanzierung, wurde in den Posten zitiert. Auch in der Kryptowelt hat die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James die Gemini-Börse der Venklefoss verklagt, aber auch Genesis und dessen Muttergesellschaft Digital Currency Group sollen diese Unternehmen 230.000 Anleger betrogen haben von mehr als einer Milliarde Dollar. Die Ironie hier ist, dass sie sich vielleicht an den öffentlichen Streit zwischen den Winklevi und DCG vor einigen Monaten erinnern, sich gegenseitig Betrug vorwerfen. Zitieren von TechCrunch. Die Klage hat auch Anklagen gegen Genesis, den ehemaligen CEO, so erhoben. Ciro, Michael Morrow und der Gründer und CEO von DTC, Barry Silbert, werden beschuldigt, 1,1 Milliarden Dollar Verluste zu verbergen und, ich zitiere, Anleger und die Öffentlichkeit betrogen zu haben. Zitat Ende. Etwa 230.000 Investoren waren von den drei Unternehmen betroffen, behauptet die Aussage der Regierung. Die Untersuchung behauptet, dass Gemini Investoren über sein Anlageprogramm Gemini Earn täuschte, indem es als risikoarme Anlage bezeichnete, was es nicht war. Die Klage behauptet, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis unterbesichert und zeitweise hochkonzentriert bei einer Entität waren, Sam Bankman-Fried's Alameda. Aber diese Information wurde den Investoren nicht offenbart. Die Agentur erklärte, dass dieser Betrug ein weiteres Beispiel für schadenverursachende Akteure in der unterregulierten Kryptowährungsindustrie ist, sagte James in einer Erklärung. Im Juni 2022 war einer der größten Kreditnehmer von Genesis Krypto-Hedgefonds, Dreipfeile Kapital. Das Kapital ist auf Milliarden von Dollar an Krediten ausgefallen und hat später im Juli Insolvenz angemeldet. Zu dieser Zeit verlor Genesis über 100 Millionen Dollar von einem anderen Kreditnehmer, Babel Finance. Der Generalstaatsanwalt von New York erklärte, dass sich der Gesamtverlust auf mehr als 1,1 Milliarden Dollar erhöht hat. Die Vorwürfe kommen zu einer Zeit, als Bankman-Fried, Mitbegründer der Kryptobörse FTX und der Kryptohandelsfirma Alameda, wegen 7 Anklagepunkten im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche vor Gericht steht. Nachdem FTX und Alameda im November Insolvenz angemeldet haben, hat das daraus resultierende Marktdesaster dazu beigetragen, dass Genesis, das im Januar Insolvenz angemeldet hat, zusammengebrochen ist. WhatsApp plant, den Benutzern in den kommenden Wochen das Umschalten zwischen 2 Konten auf Android zu ermöglichen. Ein 2. Konto benötigt jedoch weiterhin eine separate Telefonnummer und SIM-Karte. Laut The Verge, wenn Sie 2 verschiedene WhatsApp-Konten verwenden, können Sie bald beide von nur einem Gerät aus zugreifen. Meta-CEO Mark Zuckerberg gab am Donnerstag bekannt, dass WhatsApp die Möglichkeit einführt, auf Android und Google zwischen Konten zu wechseln. Und Sie müssen kein zusätzliches Gerät herumschleppen oder sich ständig aus Ihrem Konto ausloggen, um dies tun zu können. Diese neue Funktion sollte es einfacher machen, Ihre Gespräche über mehrere Konten hinweg zu verwalten, wie wenn Sie... Sie haben jetzt ein WhatsApp-Konto für die Arbeit und ein weiteres zum Nachrichtenaustausch mit Freunden und Familienmitgliedern. Es wird in den kommenden Wochen verfügbar sein. Meta weist darauf hin, dass Sie immer noch eine separate Telefonnummer und SIM-Karte benötigen. Oder ein Handy, das Multisim oder eSIM akzeptiert, wenn Sie ein 2. Konto einrichten möchten. Sie benötigen auch das 2. Telefon oder seine SIM-Karte zum Empfangen. Den einmaligen PS-Code, den WhatsApp per SMS sendet, um Zugang zu Ihrem 2. Konto auf einem anderen Gerät zu erhalten. Nach dieser SNS-Überprüfung wird die App weiterhin für beide Konten funktionieren. Ohne das 2. Gerät oder die SIM, sagt WhatsApp-Sprecherin Ellie Hedrick, Zitat Ende. Netflix hat gestern die Gewinne gemeldet und sie scheinen gut zu sein. Umsatz um 7,8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und die Schlüsselzahl hier ist, dass die weltweite Bezahlmitgliedschaft im Vergleich zum Vorjahr um 10,8% gestiegen ist. Analystenschätzungen schlagen, die Aktien von Netflix waren heute Morgen im vorbörslichen Handel um über 15% gestiegen. Aber es gibt auch das, Netflix erhöht seine US-Preise für seinen Grundplan von 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar pro Monat. Sein Premium-Plan von 19,99 auf 22,99 und einige seiner Preise in Großbritannien und Frankreich. Die Preiserhöhungen sind ein Zeichen für die Bemühungen der Streamer, die Rentabilität zu verbessern und die Kunden von den niedrigen monatlichen Abonnementgebühren abzuwenden, die die Nutzer von teuren Kabelpaketen abgezogen haben. In den frühen Tagen des Streamings. Netflix gab in seinem Gewinnbericht für das 3. Quartal an, dass der durchschnittliche Umsatz pro Mitglied im Vergleich zum Vorjahr um 1% gesunken ist, als Ergebnis von begrenzten Preiserhöhungen in den letzten 18 Monaten. Ein höherer Prozentsatz seines Wachstums stammt aus Ländern, in denen es weniger für Pläne berechnet und Änderungen an seinem Mix an seinen Abonnements. Es erwartet eine Verbesserung des durchschnittlichen Umsatzes pro Mitglied im Jahr 2020 aufgrund der Preiserhöhung und des erwarteten Wachstums der Werbeeinnahmen. Netflix hat in diesem Jahr besser abgeschnitten als viele seiner Konkurrenten mit Unternehmen wie Disney und Warner Bros. Discovery. Sie kämpfen mit kranken, alten Kabelgeschäften und kostspieligen Übergängen zum Streaming, zusätzlich zu Streiks, die ihre Produktionspläne störten. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 15 Millionen zahlende Abonnenten. Nochmals, ich weiß nicht, warum Technologieentlassungen zurückgekehrt sind. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich in den Schlagzeilen sehe. Nokia plant, bis zu 14.000 Arbeitsplätze zu streichen, was etwa 16% seiner 86.000 Mitarbeiter entspricht. Nachdem der Nettoverkaufsbericht für Q3 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20% gesunken ist, 4,80 Milliarden Dollar und der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um 69% auf 133 Millionen Euro gesunken. Zitiert CNBC. Einer der weltweit größten Hersteller von Telekommunikationsausrüstung, Nokia, sieht sich Gegenwind aus einer sich verlangsamenden globalen Wirtschaft und Kürzungen bei den Infrastrukturausgaben gegenüber, hergestellt von Mobilfunkbetreibern, Verkäufer aus Nokias größter Einheit nach Umsatz, ihrem Mobilfunknetzgeschäft, Rückgang von 24% im Vergleich zum Vorjahr, 2,16 Milliarden Euro mit einem Betriebsgewinn für die Abteilung, der sich im Vergleich zum Vorjahr um 64% verringert hat. Nokia gab an, dass dies hauptsächlich durch Rückgänge in Nordamerika angetrieben wurde. Das Unternehmen beschrieb auch Verkaufsvolumen in dem Schlüsselmarkt Indien, wie gemäßigt als 5G-Bereitstellungen normalisiert wurden. 5G ist das mobile Internet der nächsten Generation, das schnellere Geschwindigkeiten verspricht. Und Nokia ist Teil der Einführung der Technologie in Indien. Kosteneinsparungsmaßnahmen haben auch in diesem Jahr in den USA stattgefunden, insbesondere bei Anbietern wie Verizon und AT&T. Anfang dieses Jahres kündigte Nokias Konkurrent Ericsson Pläne an, 8.500 Mitarbeiter zu entlassen. Auch Teil eines Kostensenkungsplans. Es ist wieder passiert. Mike Huckabee, Liza Terkhurst und andere Autoren verklagen Meta, Microsoft und Bloomberg über die Verwendung des Books 3 Datensatzes, der illegale Bücher enthält, um ihre LLMs zu trainieren, zitiert Reuters. Eine Gruppe von Schriftstellern, einschließlich des ehemaligen Gouverneurs von Arkansas, Mike Huckabee, und der Bestseller christlichen Autorin Lysa, zu verfluchen. Sie haben eine Klage beim Bundesgericht in New York eingereicht, in der sie Meta, Microsoft und Bloomberg beschuldigen, ihre Arbeit zur Schulung von KI-Systemen ohne Erlaubnis zu nutzen. Die am Dienstag eingereichte vorgeschlagene Sammelklage wegen Urheberrechtsverletzungen besagte, dass die Unternehmen den umstrittenen Bücher 3-Datensatz nutzten, den die Autoren sagten enthält. Tausende von Piratenbüchern wurden verwendet, um ihre Großsprachenmodelle zu lernen, wie sie auf menschliche Aufforderungen reagieren sollen. Die Klage beschuldigte auch die KI-Forschungsgruppe Alota AI der Urheberrechtsverletzung, weil sie angeblich Daten zur Verfügung gestellt hat, die zum Training der Systeme des Unternehmens verwendet wurden. Das schließt Bücher 3 mit ein. Ein Bloomberg-Sprecher sagte am Mittwoch, dass das Unternehmen Books 3 nicht zur Schulung kommerzieller Versionen seines Großsprachenmodells Bloomberg GPT verwende, obwohl das Unternehmen das Dataset zur Schulung seines Forschungsmodells nutzte. Ein Sprecher von Microsoft lehnte einen Kommentar ab und Vertreter von Meta antworteten nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zur Klage am Mittwoch. Das ist interessant. OpenAI musste die Arbeit an einem Next-Generation-AI-Modell abbrechen, das es effizienter gestalten wollte. Zitiert die Informationen. Letztes Jahr, als ChatGPT weltweit Furore machte, begannen die Ingenieure von OpenAI mit der Arbeit an einem neuen künstlichen Intelligenzmodell mit dem Codenamen Arrakis. Obwohl OpenAI sich darauf vorbereitete, mit ChatGPT mit einem anderen Modell zu verbessern, das jetzt als GPT-4 bekannt ist, hat es dieses bereits früher im Jahr abgeschlossen. Das kommende Arrakis-Modell würde es dem Unternehmen ermöglichen, den Chatbot kostengünstiger zu betreiben. Ein Erfolg mit Arrakis würde OpenAI auch dabei helfen, Microsoft zu zeigen, wie schnell es aufeinanderfolgende große Sprachmodelle erstellen kann, was wertvoll wäre. Die beiden Unternehmen werden die Verhandlungen über eine Investition und Produkthandel von $10 Milliarden. Aber Mitte 2021 hatte OpenAI den Start von Arrakis abgebrochen. Da das Modell nicht so effizient lief wie erwartet, laut Personen mit Kenntnissen der Situation. Der Stolperstein bedeutete, dass OpenAI wertvolle Zeit verloren hatte und seine Ressourcen auf die Entwicklung eines anderen Modells verlagern müsste. Die Fehlleistung hat auch einige Führungskräfte bei Microsoft enttäuscht, die für das Recht bezahlt haben, die Technologie des Startups und seine Produkte zu nutzen, so ein Microsoft-Mitarbeiter, der Kenntnis von der Sache hat. Der Rückschlag von Arrakis könnte das Aura der Unbesiegbarkeit von OpenAI durchbrechen, nachdem es den AI-Pionier Google gedemütigt hat und eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen in der Geschichte aufgebaut hat. Es zeigt, wie die Grenze der KI mit Fallen übersät ist, die schwer vorherzusagen sind. Obwohl die Probleme mit Arrakis das Geschäft von OpenAI in diesem Jahr nicht verlangsamten, könnte das Startup die Auswirkungen der Pandemie spüren. Da das Rennen um den Start neuer LLMs intensiviert, nähert sich zum Beispiel der Einführung von Gemini, einer Reihe von KI-Modellen, von denen sie hofft, dass sie GPT-4 in Bezug auf Programmierung und andere Fähigkeiten sowie die Genauigkeit der Antworten übertreffen wird. OpenAI seinerseits setzt die Verbesserung seines branchenführenden Modells fort, einschließlich der Fähigkeit, Bilder zu entschlüsseln, und plant im November eine Reihe neuer Funktionen anzukündigen. LLMs untermauern Produkte wie ChatGPT und einige bei OpenAI sehen sie auch als potenzielles Betriebssystem, einschließlich für persönliche Geräte aufgrund ihrer Fähigkeit, Code zu schreiben, Bilder zu verstehen und Dateien abzurufen. OpenAI begann letzten Herbst mit der Arbeit an Arrakis in der Hoffnung, ein Modell zu entwickeln, das mit GPT-4 auf Augenhöhe wäre. Es könnte mehr laufen, aber effizienter, zum Teil durch die Nutzung eines Machine Learning Konzepts namens Spectre. Sparsamkeit, die Leute. Andere KI-Entwickler wie Google haben auch öffentlich über ihre Verwendung von Sparsity diskutiert, das OpenAI erfolgreich in frühere Software integriert hat. Arrakis hätte es OpenAI ermöglicht, seine Technologie breiter einzusetzen, da das Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl von spezialisierten Serverchips zur Verfügung hatte, um seine Software zu betreiben. Im Frühling begannen die Forscher von OpenAI mit dem Training des Modells, welches fortschrittliche Computerausrüstung zur Verarbeitung von riesigen Datenmengen nutzt, um Muster zu lernen. Die Firma erwartete es. Es wäre deutlich günstiger, als der Prozess GPT-4 zu trainieren, sagten die Leute. Frühzeitig stellten die Mitarbeiter jedoch fest, dass das Modell nicht gut genug funktionierte, um die erwarteten Vorteile zu ernten. Das Personal verbrachte ungefähr einen Monat damit, die Probleme zu beheben. Die Führungskräfte von OpenAI haben beschlossen, das Training abzubrechen, sagten die Leute. Trotz des Rückschlags könnte OpenAI seine Arbeit an Arrakis immer noch in andere Modelle einbeziehen. Das beinhaltet Gobi, ein kommendes Modell, das sowohl Texte als auch Bilder generieren oder analysieren kann, auch bekannt als multimodal. Ende Zitat. Schließlich heute Neuigkeiten, die Sie vielleicht gebrauchen können, wenn diese neuen Videoreaktionen, die zu iOS 17 und macOS Sonata kamen, wenn sie Ihnen in Ihren FaceTimes peinlich sind, hier ist, wie Sie sie ausschalten. Gehe zu Apple Insider. Als Teil von iOS 17 und macOS Sonoma führte Apple ein Videofeature namens Reaktionen ein. Wenn Sie eine Geste ausführen und halten, während Sie sich in Sichtweite der Kamera befinden, wird ein Spezialeffekt in dem von anderen Personen gesehenen Kamerafeed angezeigt. Es gibt ziemlich viele Effekte, von Sprechblasen mit Daumen hoch und Daumen runter Symbolen bis hin zu schwebenden Ballons, Konfetti und stürmischen Regenbedingungen. Ausgelöst durch Handgesten sind sie so konzipiert, dass Benutzer ihre Gefühle mit einem verbesserten Bild zeigen können. Dieses Feature kann unterhaltsam sein, wenn es bei Anrufen mit Freunden und Familie aktiv ist, aber es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Sie die Reaktionen vielleicht nicht unbedingt haben möchten. Zum Beispiel wollen Sie nicht, dass plötzlich Feuerwerk und Konfetti um Sie herum erscheinen, wenn Sie sich in einem arbeitsbezogenen Konferenzanruf befinden. In einem realen Beispiel, Matt Howie schrieb über Mazedonien einen Vorfall, bei dem ein Freund von ihm in einer Online-Therapiesitzung war. Als der Therapeut fragte, ob es ihm gut ging, zeigte der Freund beide Daumen nach oben, was Feuerwerk hinter seinem Kopf auslöste. Es ist so schlimm, dass Online-Therapiesitzungen jetzt mit einer Warnmeldung beginnen, schreibt Howie. Leider hat Apple die reaktiven Elemente als Standard für jeden eingestellt, der ein Apple Silicon Mac mit macOS Sonoma oder später verwendet oder ein kompatibler Mac unter Verwendung eines iPhone 12 oder später mit Kontinuitätskamera oder auf einem iPhone mit iOS 17. Das Merkmal ist auch hauptsächlich mit FaceTime verbunden, aber sie können auch in anderen videobasierten Apps verwendet werden. Wie man FaceTime-Reaktionen in iOS 17 ausschaltet. FaceTime öffnen, Kontrollzentrum öffnen, das ist es. Wischen Sie von oben rechts auf dem Display für Face-ID-Geräte und von unten für Touch-ID-Modelle nach oben. Tippe auf Effekte, dort wird ein Kamerasymbol sein und das Wort Reaktionen anzeigen. Tippe auf Reaktion. So deaktivieren Sie FaceTime-Reaktionen in macOS Sonoma. Öffnen Sie FaceTime. Klicken Sie auf das Videomenü in der Menüleiste. Es wird in der Regel ein grünes und weißes Kamerasymbol sein. Klicke auf Reaktion und Zitat. Heute gibt es nichts für dich. Wir sprechen morgen.